उनकी जिंदगी में वापस जाने का मेरे पास सिर्फ यही रास्ता था कि मैं तुम्हारी जन्म की सच्चाई अभिमान को बता दूं। इसीलिए मैंने उसे सारा सच बता दिया। और तुम वाकई में अभिमान के ही बेटे हो। इस वक्त ये बात सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम अभिमान सिंघानिया के बेटे हो। अब आगे, अगर हमें एक बार फिर से रॉयल जिंदगी जीनी है तो हमें सिंघानिया परिवार में जाना होगा, और वहां जाने का रास्ता सिर्फ यही था, इसीलिए मैंने इस बात का इस्तेमाल किया। मैं चाहती तो बहुत पहले भी तुम्हें ये बात बता सकती थी, लेकिन जब अमरेंद्र ने खुदकुशी की उस वक्त मुझे किसी तरह का कोई होश नहीं था, और जब अरमान ने हमें दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया तब भी मैं उसे सच नहीं बता पाई थी, क्योंकि मुझे कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन आज सही मौका है। आज हमने अंश सिंघानिया की जान बचाई है, तो हमारा उन पर एहसान चढ़ चुका है, और अगर इस वीक मोमेंट पर उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके बेटे हो तो हमें ज़रूर उनके घर में एंट्री मिल सकती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वो शातिर औरत अभी भी वीर का ब्रेन वॉश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। वीर पूरी तरह से टूटा हुआ सा लग रहा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस अरमान सिंघानिया से वो शुरू से इतनी नफरत करता आया है, जो उसका राइवल था, वीर ने उसकी बीवी तक को अगवा करने की कोशिश की, असल में वो उसी का अपना संगा भाई निकलेगा। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। फिलहाल वो बेचैन होकर एक तरफ बैठता चला गया, लेकिन इस बार उसने अपने आंसुओं को बेरहमी से पूछते हुए कहा, अरमान सिंघानिया ने बहुत बड़ी गलती की है अमरेंद्र रामचंद्र को मारकर और हमसे हमारी सारी प्रॉपर्टी छीनकर। अब मैं, वीर अमरेंद्र रामचंद्र का बेटा, न केवल अपनी धन संपत्ति वापस लूंगा, बल्कि अरमान सिंघानिया की भी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। ये कहते हुए वीर के होठों पर शैतानी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही सारी लड़कियां आस्था के साथ मौजूद थीं और उसकी पैकिंग करने में मदद कर रही थीं, क्योंकि आस्था अविनाश के साथ किसी फ्लाइट में नहीं बल्कि अविनाश के उसके पर्सनल चॉपर के द्वारा जाने वाली थी। तो इसीलिए नानी माँ ने बिना देरी किए सबसे पहले अपने हाथों के बनाए हुए बेसन के लड्डू और आस्था के मनपसंद अचार और भी कितनी ही सारी व्यंजन डिशेस जो कि आस्था की फेवरेट थीं, वो सब आस्था के लिए बना बनाकर टिफिनों में पैक करने शुरू कर दिए थे। जब नानी माँ आस्था के लिए ये सब चीजें बना रही थीं, तब तक रौनक किचन पर बैठकर चटकारे ले लेकर सारी चीज एक एक करके खा रही थी। वहीं नानी माँ ने रौनक को चिंता से देखा, मन ही मन आह भरते हुए सोचा, अगर रौनक बिटिया यहाँ से नहीं उठी तो आस्था के साथ क्या जाएगा? रौनक तो सारा खाना यहीं खा जाएगी, क्योंकि रौनक की भूख इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। फिलहाल नानी माँ ने बहाने से आहान को किचन में बुलवाया, उसके कानों में सरगोशी करते हुए धीरे से फुसफुसाई, बेटो तुम एक काम करो, रौनक को गार्डन में जाकर टहलाओ। इस हालत में टहलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये इसी तरह से यहाँ बैठे बैठे सारा खाना खाती रहेगी तो आस्था की बिटिया के साथ ऑस्ट्रेलिया क्या जाएगा? मैं उसके दादाजी के लिए कुछ बनाकर भेजना चाहती हूँ। एंजल बिटिया भी साथ जा रही है, उसके लिए भी मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। स्पेशली उसने मुझसे कहा था कि उसे मेरे हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं वही उसके लिए बना रही हूँ। लेकिन जब भी कोई लड्डू बनाकर प्लेट में रखती हूँ तो रौनक बिटिया झट से चट कर जाती है। बेटा कुछ तो करो, अब तुम ही मेरी कोई मदद कर सकते हो। जैसे ही नानी ने परेशानी भरी आवाज में ये बताया, वैसे ही आहान की नज़र किचन के स्लिप पर बैठी हुई रौनक पर पड़ती है। उसके एक हाथ में बेसन का लड्डू था और एक हाथ में मटरी थी, और वो लगातार कभी एक बाइट बेसन के लड्डू का ले रही थी तो एक बाइट मटरी का ले रही थी, और वो लगातार खाई जा रही थी। आहान ने आश्चर्य से रौनक को देखते हुए मन में सोचा, अगर ये इसी तरह से खाती रही तो मेरा बच्चा भी कहीं इसी लड्डू जैसा गोल मटोल ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी ही ये इमेजिन करने के बाद आहान फटाफट से रौनक ने के पास चला आया और किचन स्लिप पर बैठी हुई रौनक को उसने अपने गोद में उठा लिया। रौनक अपनी आईब्रोज काते हुए उसे सवालिया नजरों से घूर कर एकटक देखने लगी। उसके गुस्से से बचने के लिए आहान दांत चमकाते हुए मुस्कुराया, फिर उसके कान में चुपके से फुसफुसाया, मिस हवा हवाई, और कितना खाओगी यार? बस करो, चलो मैं तुम्हें गार्डन में थोड़ा सा टहला कर आता हूँ। वैसे भी नानी माँ ने मुझे बताया था कि इस हालत में ज्यादा खाने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बन सकती है। तुम्हें प्रॉब्लम हो गई तो मेरे बच्चे को भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए अब तुम फटाफट से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गार्डन में वॉक पर लेकर चलता हूँ, ठीक है? वहीं रौनक के जाने के बाद नानी माँ ने चैन की सांस ली। फिर उन्होंने फटाफट से आस्था के लिए 5 किलो के सब डब्बे भरकर तैयार कर दिए थे। वहीं आस्था ने भी जल्दी ही अंश के लिए कुछ कपड़े रख लिए थे, क्योंकि अविनाश ने उसे साफ मना भी किया था कि वो अंश के लिए ज्यादा कपड़े बिल्कुल ना पैक करें और जल्दी से जाने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि अविनाश का ऑस्ट्रेलिया में खुद का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था तो वहीं से उसके लिए नए कपड़े खरीद लेंगे। अब ये सुनकर आस्था मुस्कुराई और उसने अविनाश की बात मान ली, लेकिन अपनी फेवरेट साड़ी और अपनी माँ का लॉकेट लेना वो नहीं भूली थी। अब फिलहाल देर ना करते हुए आस्था ने जल्दी से पैकिंग कंप्लीट ली, क्योंकि आज शाम को ही उसे अविनाश के साथ निकलना था, तो इसीलिए कुछ वक्त वो अरमान के साथ बिताना चाहती थी। हालांकि दादाजी और अभिमान जी अंश के आसपास बैठे हुए थे, उसे लगातार गोद में लेकर उसे पुचकार रहे थे, क्योंकि वो पूरे हफ्ते 15 दिनों के लिए उनसे दूर जा रहा था, तो इसीलिए वो उसको जी भर के लाड प्यार जता रहे थे। वहीं थोड़ी देर बाद आहान तो लगातार अंश को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था कि मेरे प्यारे चैंप, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ मुझे एक कॉल कर देना बेटा, तेरा चाचा अपने प्राइवेट जेट से तुरंत वहां तुझे लेने पहुंच जाएगा। और हाँ, दिल खोलकर अविनाश भैया और एंजल भाभी उन सबके ऊपर सुसु पॉटी करना, किसी भी तरह का रिस्क मत लेना और ना कोई शर्म करना है। तू सिर्फ और सिर्फ आहान सिंघानिया का भतीजा है, तू सुन रहा है ना मेरी बात। आहान की उटपटांग इंस्ट्रक्शन सुनकर सभी लोगों को हंसी भी आ रही थी और सभी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि सभी अंश से कुछ ज्यादा ही हद तक अटैच हो चुके थे। फिलहाल ध्रुव ने अगले ही पल तुरंत आहान को अंश से दूर धकेलते हुए कहा, ओए सारी बातें तू ही करेगा क्या, मैं उसे थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे दूं, मुझे भी उससे कुछ बात करनी है यार। अब आहान मुंह बनाकर थोड़ा पीछे खड़ा हो गया और अब ध्रुव ने अंश की ओर गौर से देखकर मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंश बेटा कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो तो तुरंत ही मुझे फोन कर देना, ठीक है? और अगर तुम्हारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा डॉक्टर चाचा है ना, वो तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा, तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? और अपना ख्याल रखना है। ये सुनकर आकाश और सुमित, साथ ही साथ दादाजी और अभिमान जी, चारों ही हैरानी से उन दोनों को लगातार अनमने ढंग से देखे जा रहे थे और साथ साथ अपना सर पकड़कर आड़े टेढ़े मुंह बना रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हों कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वहीं जब ध्रुव अंश को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि तभी अचानक आहान तुरंत बीच में कूदते बोल पड़ा, चैंप अपने इस डॉक्टर चाचा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, तुम्हें मेरी बात माननी होगी है, ठीक है?
वरना ये तुझे अपने जैसे बना देगा, एकदम बोरिंग, और तुझे तो मैं किसी कीमत पर डॉक्टर नहीं बनने दूंगा, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ चैंपियन बनेगा, रेसर बनेगा, बॉक्सर बनेगा, लेकिन डॉक्टर तो मैं तुझे किसी कीमत पर बनने नहीं दूंगा। तभी ध्रुव आहान को एकदम से घूरते हुए तपाक से बोला, अबे ये क्या बकवास कर रहा है, अंश डॉक्टर बनेगा, वो चैंपियन या बॉक्सर नहीं बनेगा, ठीक है? इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई नाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और तुम मेरे और चैम के बीच में ऐसे नहीं आ सकते हो। आहान उसकी बातों अनसुना करते हुए बेपरवाही से जवाब देता है, शायद तुम भूल गए हो, मैं ऑलरेडी उसके लिए स्पोर्ट्स कार खरीद चुका हूँ, क्योंकि वो स्पोर्ट्स फील्ड में जाएगा, वो रेसर बनेगा या फिर बॉक्सर बनेगा, ठीक है? लेकिन वो डॉक्टर किसी कीमत में नहीं बनेगा और ना ही मैं उसे डॉक्टर बनने दूंगा। डॉक्टर की कुछ लाइफ होती है, हमेशा काम काम काम, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, ब्ला ब्ला, इसलिए मैं अपने चैम को डॉक्टर लाइन में नहीं भेजूंगा। इतना सुनते ही ध्रुव तुरंत तिलमिलाकर आहान पर बरस पड़ा, देखो आहान अब ज्यादा हो रहा है, मैंने कहा ना अंश सिर्फ डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, वो बॉक्सर तो किसी कीमत पर नहीं बनेगा। जल्दी ही दोनों की कहा सुनी की आवाजें पूरे के पूरे हॉल में गूंजने लगी थीं। दोनों ही अब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और अंश के फ्यूचर को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब उन दोनों की आवाजें सुनकर किचन में काम करते हुए नानी माँ और रौनक, जो अपने कमरे में आराम कर रही थीं, अब फटाफट से वहां की तेज आवाजें सुनकर हड़बड़ाते हुए वो भी हॉल में आ गईं। वहीं राधिका, रश्मि और वंशिका, जो कि आस्था की मदद कर रही थी उसका सामान पैक करवाने के लिए, अब ध्रुव की ऊंची आवाज सुनकर वंशिका भी तुरंत चौंक गईं और चारों दौड़कर हॉल में आ गईं। वहीं दादाजी और अभिमान जी, साथ ही साथ सुमित और आकाश, उन्हें सुलगती हुई नजरों से देखे जा रहे थे और उन्हें शांत करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा था। अरमान, जो कि इस वक्त अपने फोन पर कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा था, अब जैसे ही उसे भी थोड़ा हल्ला गुल्ला करने की आवाजें सुनाई दी, वैसे ही वो भी तुरंत अगले ही पल हॉल में आ पहुंचा और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है, क्योंकि उस वक्त ध्रुव और आहान ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ था और दोनों ही लगातार एक दूसरे की आंखों में गुस्से से एकटक देखे जा रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, डॉक्टर रेसर। ध्रुव लगातार बोल रहा था डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आहान भी एक ही बात दोहरा रहा था, रेसर रेसर रेसर। अब जबकि सभी वहां आ गए तो नानी माँ उन दोनों को ऐसे देखकर थोड़ा घबरा गईं और उन्हें डांटने लगीं, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, किस बात को लेकर बहस हो रही है तुम दोनों में, क्या हुआ है, कुछ बताओगे तुम दोनों? नानी माँ की बात सुनकर भी उन दोनों पर कोई असर नहीं आया। वहीं आस्था तुरंत नीचे आई और उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर घबराते हुए बोली, ध्रुव जी आहान जी हुआ क्या है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इस तरह क्यों झगड़ रहे हैं, आखिर यहाँ हुआ क्या है? आहान आस्था तो देखकर जल्दी से बोला, भाभी आप आज इस मैटर से दूर रहेंगी, और फिर ध्रुव को तिरछी नजरों से देखकर दांत पीसते हुए बोला, आज इस डॉक्टर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आहान की बात सुनते ही सभी एक पल के लिए ठिठक गए और एक दूसरे की शक्ल अविश्वास से देखने लगे। अब तो आस्था को भी उन्होंने इस मैटर से दूर रहने के लिए कह दिया था। अब अरमान तुरंत वहां आया और कोल्ड वॉइस में बोला, स्टॉप इट। अरमान के इतना बोलते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हटकर खड़े हो गए थे, मानो जैसे दोनों को सांप सूख गया हो। अब जैसे ही वो दोनों एकदम से ठिठक कर वहां चुपचाप खड़े हो गए, रश्मि राधिका और वंशिका एक दूसरे की शक्ल ना समझी में देखने लगती हैं। फिर अचानक वंशिका ध्रुव की ओर सवालिया नजरों से देख के घबराई आवाज में पूछती है, क्या हो गया आपको? आप इस तरह बच्चों के जैसे आहान से क्यों लड़ रहे थे? हुआ क्या था यहाँ पर? क्या कुछ बताएंगे? वंशिका की बात सुनकर ध्रुव ने मुंह फुलाते हुए जल्दी से जवाब दिया, इसी से पूछ लो। फिर वंशिका ने आहान से हिचकिचाते हुए पूछा, तुम तो कुछ बता दो, हुआ क्या था? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों झगड़ रहे थे? अब आहान भी मुंह बनाते हुए ध्रुव की ओर देखकर फट से बोला, आप इसी से पूछ लो भाभी, आखिर यहाँ क्या हुआ था? अगर मैं कुछ बताऊंगा तो ये बोलेगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। इतना कहकर आहान चुप हो गया और फिर ध्रुव की ओर चुपके से देखने लगा। अब दोनों एक बार फिर एक दूसरे से मुंह फेर कर खड़े हो गए। उनकी नौटंकी देखकर अरमान का चेहरा और सख्त हो गया और अरमान उन दोनों के पास चला आया। वो बारी बारी से दोनों को देखते हुए गहरी और कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? अरमान की आवाज सुनते ही तुरंत आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, अरमान भाई, मैं कह रहा था कि अंश बड़ा होकर बॉक्सर या रेसर बनेगा, लेकिन ध्रुव कह रहा है कि उसे डॉक्टर बनाना है। आप बताइए, मैं अपने चैंप को डॉक्टर थोड़ी ना बनाऊंगा, वो जाकर लोगों को सुई लगाते फिरेगा। नहीं नहीं, मैं उसे सिर्फ बॉक्सर ही बनाऊंगा और ये फाइनल है। आहान की बात सुनकर ध्रुव भी अब तमतमाते हुए आगे आया और आहान को पॉइंट करते हुए बोला, अरमान भाई, इसमें गलती पूरी तरह से आहान की है। अभी से ये छोटे से बच्चे को रेसर और बॉक्सर बनाना चाहता है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं चैंप को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ ताकि वो लोगों की मदद करे, लेकिन ये बेवजह इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये उसे बॉक्सर बनाएगा। अब ये सुनकर सभी को सारा मामला समझ में आया। सभी ने नामे सिर हिलाकर अपने सिर पर हाथ मार लिया, लेकिन रश्मि तो अब खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ी। वहीं बाकी सब भी उन दोनों को देख के जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। अब सबको खुद पे हंसता हुआ देखकर ध्रुव आहान ने तुरंत एक दूसरे को भोली सी सूरत बनाकर देखा, क्योंकि अब दोनों को ही समझ में आ चुका था कि वो थोड़ी देर पहले कितना चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था वसुंधरा के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यार दोस्तों, क्यों कंजूसी कर रहे हो यार? कमेंट करने में आप लोगों के लिए ही मैंने स्टोरी को आगे बढ़ाया है और पूरी कोशिश की है स्टोरी की प्योरिटी को बरकरार रखने की। प्लीज दोस्तों, थोड़े कमेंट करके मोटिवेट कर दिया करो। और एक लाइक शेयर में कितना ही वक्त लगता है? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कम से कम 2600 से भी ज्यादा वर्ड का चैप्टर आप लोगों को दूं, बट आप लोग 2 वर्ड्स का कमेंट नहीं कर सकते,